अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है सिसकती जिंदगी। चिड़िया तिनके चुन चुन कर घोंसला बनाती है। उसने भी तिनके चुन चुन कर एक नीड़ बनाने का स्वप्न देखा था। तिनके बटोर बटोर कर एकत्रित भी कर लिए थे और सोचा था कि एक दिन इसी नीड़ में वो सुरक्षित रहेगी, पर नियति के एक कठोर झोंके से वो तिनके तितर बितर हो गए थे। कल्पना का नीड़ साकार होते होते ढह गया था। आज वो सोचती है, मनुष्य कुछ करना भी चाहे तो नियति के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। जीवन में मनुष्य कितनी आकांक्षाएं रखता है, पर उसने तो एक छोटा सा घर और एक सहचर चाहा था जो सुख दुख में उसका साथ दे। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सूरत शक्ल मामूली थी। बचपन से वो अत्यंत मेधावी थी। उसकी आकांक्षा थी कि किसी ऊंचे पद पर पहुंचकर माता पिता को सुख प्रदान करे। वो नौकरी के संग संग प्रतियोगिताओं में भी बैठती थी। थोड़ी बहुत पूंजी भी उसने अर्जित कर ली थी। उसके एक 4 साल का बच्चा था। जब भी वो बच्चे को देखती, अपने गुजरे हुए अतीत में पहुंच जाती। गुजरे हुए लम्हों में एक एक तस्वीर चलचित्र की भांति उसके मानस पटल पर आकर उसे उद्वेलित कर देती। प्यार करते करते वो बच्चे को ढकेल देती। वो बच्चा उसके अतीत का ऐसा कलंक था जिसे हर समय सामने देखकर वो अपने अतीत को भुला नहीं पाती थी। जब पहली बार वो शैलेश से मिली थी तो उसके स्वभाव और व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई थी। इतने वर्षों की तपस्या पल भर में ढह गई थी। दोनों ही यौवन की बाढ़ में बह गए और एक दिन उसने पाया कि वो शैलेश के बच्चे की माँ बनने वाली है। शैलेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है वंदना, हम 1-2 दिन के अंदर विवाह कर लेंगे। उसने वंदना के माता पिता से बात की। वे दोनों भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। घर बैठे इतना अच्छा दामाद उन्हें मिल रहा था कि उनके लिए सौभाग्य की बात थी। शैलेश ने अपनी जोड़ी हुई रकम वंदना को देकर कहा, वंदना, हमें विवाह से पहले एक छोटा सा मकान खरीदना चाहिए। मकान मालिक से मेरी बात हो चुकी है, कुछ पैसे शायद कम पड़े, तुम अपनी तरफ से मिलाकर सौदा पक्का कर लो। वंदना ने उत्तर दिया, नहीं शैलेश, हम छोटा मकान न लेकर बड़ा मकान लेंगे जिससे माता पिता भी मेरे संग रह सकें। शैलेश ने लाचारी से कहा, वंदना, बस इतना ही पैसा मैंने जोड़कर रखा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना अभी हम एक छोटा सा मकान ले लें, थोड़े दिन बाद जब मैं ज्यादा पैसे जोड़ लूंगा तब बड़ा मकान खरीद लेंगे। इस बीच तुम्हारे माता पिता इसी मकान में रह लें तो क्या बुराई है। वंदना बोली, शैलेश, अब हम 2 नहीं हैं, मेरा जितना रुपया है वो भी तो तुम्हारा है, बड़ा मकान हम दोनों मिलकर ले लेंगे। शैलेश बोला, वंदना, तुम्हारे पैसों को मैं हाथ लगाना उचित नहीं समझता। तुम्हारे पैसे किसी भी समय जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। वंदना उसके मुंह पर हाथ रखती हुई बोली, नहीं शैलेश, अब हम 2 नहीं 1 हैं। शैलेश बोला, ठीक है वंदना, अगर तुम बड़ा मकान लेना उचित समझती हो तो ले लो। उस आदमी के पास जिससे मैंने बात की है एक बड़ा मकान भी है। वो दोनों ही मकान बेचकर लंदन जाना चाहता है। तुम इस पते पर रुपया लेकर चली जाओ, इस बीच में मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र खरीदने चला जाऊंगा। वंदना को ऑफिस जाने में देर हो रही थी। वो बोली, शैलेश, तुम ही चले जाओ, ऑफिस में देर से पहुंचने पर बॉस की त्योरी चढ़ जाएगी। शैलेश बोला, नहीं वंदना, ये मकान तुम्हारे नाम से ही खरीदा जाएगा, तुम्हारा जाना जरूरी है। वंदना हंसकर बोली, ना बाबा, तुम ही जाओ, ये बेकार का काम मुझसे नहीं होगा। मंगलसूत्र तो लेने जा ही रहे हो, ये काम भी निपटाते आना। हार कर शैलेश को जाना पड़ा। पर क्या इतना रुपया लेकर वह लौटा? रुपया लेकर वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। अपनी सच्चरित्रता की धाक जमा कर वो उड़नछू हो गया। कभी वंदना सोचती, वो तो जाने को किसी प्रकार तैयार नहीं था, पर फिर मन कहता कि यह सब नाटक था। वो ये सब कहकर अपनी ईमानदारी जताना चाहता था। उसे याद आया कि यह खबर सुनते ही उसके माता पिता साल भर से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए थे। पेट में पलते उस कलंक को समाज की नजरों से बचाने के लिए वो माता पिता के संग हफ्ते भर बाद शहर छोड़कर दिल्ली चली आई थी। यथासमय बच्चे को जन्म देकर उसने सोचा था कि उसे अनाथालय में रख देगी, पर बच्चे का मासूम चेहरा देखकर वो ये कठोर कदम उठा ना पाई। बच्चा क्या था, हूबहू शैलेश का प्रतिबिंब था। जब वो किलकारी मारकर उसकी गोद में लपकता तो वो उसे छाती से चिपका लेती, पर दूसरे ही क्षण वो उसे दूर पटक देती। घृणा से उसका रोआ रोआ चलने लगता। शैलेश की धूर्तता उसकी आंखों के सामने नाच जाती। बच्चे में शैलेश का प्रतिबिंब देखकर वो पागल सी हो जाती। इसी विरोधाभास में उसकी जिंदगी कट रही थी। अपनी लगन और मेहनत से वो एक बड़ी फर्म की डायरेक्टर बन गई थी। क्या नहीं था उसके पास, पैसा, नौकर चाकर, सुंदर बंगला और हाथ बांधे छोटे ऑफिसर। कितनों ने उससे प्रणय निवेदन भी किया था, पर उसने सभी को धुतकार दिया था। पुरुषों से उसे असीम घृणा थी। सबको यही पता था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ये बच्चा उसी की निशानी है। पर अपने पाप की कथा तो वही जानती थी कि वो बिन ब्याही माँ है। 5 सालों से वो घुट रही थी। दिन भर तो वो ऑफिस में व्यस्त रहती, पर शाम को जब वो बच्चे को क्रैश से लेकर लौटती तो उसे देखते ही वो अपने अतीत में खो जाती। एक बार माँ की ममता उसे झकझोर देती, वो उसे प्यार से चूमती, पर दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे वो किसी सर्प को पकड़े है। वो उसे धक्का देकर रोने लगती। कैसी विडंबना थी, माँ होकर भी वो बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे पाती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। बच्चे के मुंह पर उदासी छाई रहती थी, वो कभी खुलकर नहीं हंसता था। बच्चे को स्कूल भेजना था, पर वंदना उसे बाप का नाम कैसे दे सकती थी। वो बिन ब्याही माँ का बेटा है ये जानकर लोग उस पर थूकेंगे, और बच्चे राहुल को भी सभी बच्चे इतना चिढ़ाएंगे कि वो सहन नहीं कर पाएगा। उसका मन अत्यंत अशांत था। साधु संतों पर उसे कभी विश्वास नहीं रहा। रोज ही अखबारों में जब विद्यानंद के सारगर्भित लेख निकलते तो वो सोचती हो सकता है वो वहां जाकर कुछ शांति पा सके। रोज ही वो सोचती, पर उसे लगता आज तक कोई सच्चा साधु हुआ है। सच्चा होता तो हिमालय के किसी गुफा में बैठकर भगवान की आराधना करता। इस संसार में आकर वो अपना समय क्यों नष्ट करता। एक दिन उसकी सहयोगी ममता ने कहा, विद्यानंद सचमुच महान है। इतनी छोटी उम्र में उनका सारगर्भित प्रवचन सुनकर आश्चर्य होता है। उनका भव्य व्यक्तित्व देखकर श्रद्धा होती है। लगता है कि वेद पुराणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया है। किसी भी विषय पर पूछने पर वो मिनटों में जिज्ञासा शांत कर देते हैं। उनकी चमकीली आंखों में भक्ति का स्रोत बहता है। वहां जाकर मन को शांति मिलती है। मैं तो जब भी समय मिलेगा जाने का प्रयत्न करूंगी। जब वो भाव विभल होकर भगवान के भजन गाते हैं तो कौन होगा जो मुग्ध ना होगा। बहुत सुरीला है उनका गला। वंदना ने सोचा क्यों ना वो भी किसी दिन विद्यानंद का प्रवचन सुने, हो सकता है वहीं उसे कुछ शांति मिल जाए। एक दिन ऑफिस से उसे जल्दी ही छुट्टी मिल गई। बच्चे राहुल को उसने क्रैश से लिया, फिर वो प्रवचन सुनने पहुंच गई। प्रवचन बड़ा ही सारगर्भित था। विद्यानंद सचमुच में विद्या के भंडार थे। लंबी दाढ़ी मूछों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य लग रहा था। वंदना के हृदय में भी उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसे लगा उसने यहाँ आकर अच्छा ही किया। चलने से पहले उसने उनसे मिलने का निश्चय किया। उनके एक भक्त द्वारा उसने उन्हें संदेश भेजा कि मन की शांति के लिए वो उनसे कुछ पूछना चाहती है। विद्यानंद ने उसे दूसरे दिन का समय दे दिया। नियत समय पर वो विद्यानंद से मिली। उनकी लंबी दाढ़ी मूछों तथा चमकती दो आंखों ने उसे आकर्षित कर लिया। अभी वो सोच ही रही थी कि विद्यानंद के मुंह से एक खुशी की चीख निकली। वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर पागलों के समान उसकी तरफ बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वंदना डर गई। वो चीख पड़ी, पर बीच में ही अपना वेणु नाम एक परिचित आवाज में सुनकर चौंक पड़ी। प्यार से बुलाया गया ये संबोधन क्या वो कभी भूल सकती थी। शैलेश और इसके सिवाय इस नाम की किसी को जानकारी नहीं थी। शैलेश उसे प्यार से वेणु ही पुकारता था। एक बार की वंदना की आंखों में प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा, पर दूसरे ही क्षण उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां से निकलने लगी। घृणा से विद्यानंद की तरफ देखते हुए वो बोली, तो तुम हो, सब कुछ लूट कर अब क्या लेने आए हो। मेरी जिंदगी भर की कमाई और कलंक की निशानी देकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने जो अपनी मेहनत से सम्मान पाया है, शायद उसे छीन कर मुझे फिर से बदनाम करने आए हो। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं संसार के आगे तुम्हारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। अब मैं असमर्थ नहीं हूँ। मैं भी तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये कहकर क्रोध से पागल जैसी ही वो बच्चे का हाथ पकड़कर जाने को मुड़ी, विद्यानंद ने उसका रास्ता रोककर आंखों में आंसू भरकर कहा, वेणु, ये मेरा बेटा है ना, एक बार इसे मुझे छाती से लगा लेने दो। वंदना चीखी, हाँ हाँ, ये तुम्हारा दिया कलंक है, पर मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगी। विद्यानंद गिड़गिड़ा कर बोला, वंदना, जाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर मैंने अपनी निर्दोषिता साबित कर दी, तब तो तुम मुझे माफ करके अपने हृदय में पति का स्थान दोगी ना। क्रोध से कांपती आवाज में वंदना बोली, तुम्हारी धूर्तता से मैं परिचित हो चुकी हूँ, अब दूसरी बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। तुमने रोकने की कोशिश की तो मैं इसी समय भीड़ इकट्ठी करके तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। शैलेश की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो बोला, वंदना, सिर्फ 5 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। पर क्रोध में पागल वंदना 1 मिनट भी नहीं रुकी। वो घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल रोती माँ को देखकर बोला, मम्मी, वो साधु बहुत गंदा था ना, उसने तुम्हें रुला दिया। फिर प्यार से उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, रो मत मम्मी, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कल हम दोनों उस साधु को खूब मारेंगे। ये कहकर उसने मुक्का तान लिया। रोती रोती वंदना के आंसू यकायक थम गए। उसके हृदय ने उसे धिक्कारते हुए कहा, वंदना, तू कहीं गलती तो नहीं कर बैठी? एक बार तुझे शैलेश की बात सुननी थी। हो सकता है उसके संग कुछ अनहोनी घटित हो चुकी हो, वरना इतनी शोहरत पाया हुआ शैलेश तुझे पाने के लिए इतना गिड़गिड़ाता नहीं। न तो उसके पास पैसे की कमी होगी और न स्त्रियों की। स्त्रियां तो उस पर जान छिड़कती हैं। कहीं तेरे कठोर व्यवहार से उसका दिल टूट गया और वो कुछ कर बैठा तो? वंदना बुदबुदाई, इस समय तो रात हो गई है, मैं सुबह उसकी पूरी बात सुनकर ही निर्णय लूंगी। रात भर वो सो नहीं पाई। शैलेश की भरी आंखें और गिड़गिड़ाती आकृति उसके सामने आकर उसे उद्वेलित करती रही। दूसरे दिन सुबह के अखबार के मुख पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में विद्यानंद की आत्महत्या का विस्तृत वर्णन था। अखबार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक चीख मारी और लपक कर बेटे राहुल को सीने से लगाकर सिसकने लगी। थोड़ी देर बेटा सीने से चिपका रहा, फिर भोलेपन से बोला, मम्मी, आज तुमने अभी तक मुझे धक्का नहीं दिया, अब नहीं दोगी ना? उसकी आंखों में सावन भादों की झड़ी सी लग गई। सिसकते सिसकते वो इतना ही कह पाई, नहीं मेरे राजा बेटे, अब मैं तुम्हें कभी धक्का नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम मेरे पिछले कठोर व्यवहार को भूल जाओगे। आज इतना प्यार पाकर बच्चे में साहस आ गया था। उसने अपनी नन्ही बाहें माँ के गले में डालते हुए पूछा, मम्मी, एक बात पूछे? जिस बात को पूछने पर तुमने मुझे कई बार मारा है, आज तो नहीं मारोगी? वंदना ने भीगी आंखों से कहा, नहीं बेटे, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, जो भी पूछना है पूछ लो। राहुल ने भरे गले से कहा, सब बच्चों के पिताजी होते हैं, वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिताजी कब आकर मुझे प्यार करेंगे? वो कहाँ रहते हैं? अश्रुपूरित नेत्रों से बेटे की तरफ देखते हुए उसने आकाश की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत दूर चले गए हैं। बच्चे ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, आप हवाई जहाज से आ जाओ, हम और मम्मी तुम्हें बहुत याद करते हैं। उस अनदेखे पिता के प्रति बच्चे का इतना प्यार देखकर उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने सोचा, उसने तो अपने पति को सामने पाकर भी घृणा से बिना कुछ पूछे मुंह फेर लिया था। पति की करुण वाणी सुनकर भी उसका पत्थर सा हृदय नहीं पिघला था। पर बच्चे के हृदय में पिता के प्रति इतना प्यार देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। शाम को विद्यानंद का एक शिष्य भरी आंखों से एक पत्र वंदना को पकड़ा कर चला गया। पत्र शैलेश का था। पत्र में उसने आप बीती लिखी थी। पत्र क्या था? उस निर्दोष की करुण व्यथा थी। पत्र के एक एक शब्द से उसकी सच्चाई प्रकट हो रही थी। प्रिय वेणु, जब तक ये पत्र तुम तक पहुंचेगा, मैं सभी कष्टों से मुक्ति पालूंगा। अपने प्रति तुम्हारी असीम घृणा लेकर ही जा रहा हूँ। इतने दिन तक जिस आस पर जिया था, उसे तुम्हारे कठोर व्यवहार ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है। तुम 5 मिनट भी रुककर मेरी बात सुन लेती तो मैं निर्दोषिता के सभी सबूत तुम्हारे सामने रख देता। तुम्हारे और बच्चे के अभाव में मेरा जीवन कैसे कटा है, ये अब बताना बेकार है। उस समय तो तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था, पर आज सभी कुछ कह कर जाऊंगा। तुमसे रुपए लेकर जैसे ही मकान मालिक के मकान की पक्की रसीद और मंगलसूत्र लेकर मैं लौट रहा था, उसी समय मैं खुशी में बदहवास सामने आती एक कार को नहीं देख पाया और उसके धक्के से मुझे काफी चोट आई। 15 दिन मैं अस्पताल में बेहोश रहा। होश आने पर सबसे पहले मैंने एक मित्र द्वारा तुम्हारे घर संदेश भिजवाया, पर तब तक तुम शहर छोड़ चुकी थीं। स्वस्थ होते ही मैंने पूरा शहर छान मारा, पर तुम नहीं मिली। मैंने अपने जिंदा रहने की खबर भी अखबार में छपवाई, पर लगता है तुमने वो अखबार नहीं पढ़ा। अखबार की कतरन तथा एक्सीडेंट की खबर की कतरने तथा जो मंगलसूत्र पहनने योग्य नहीं समझा, कभी तुम्हारे गले में तुम्हें पाकर भी नहीं पहना पाया। तुम्हारी याद में पागल में वर्षों घूमता रहा। फिर शांति के लिए मैंने गहन अध्ययन किया और साधु बनकर जीवन यापन करने का निश्चय किया। सोचा, हो सकता है मन की शांति पाने के लिए कभी तुम मेरा प्रवचन सुनने आओ। इसी आशा पर जिंदा था, पर अब इस जीवन में क्या धरा है जिसको पाने के लिए मैं वर्षों तड़पा। आज उसी की आंखों में अपने प्रति असीम घृणा देखकर क्या मैं जिंदा रह सकता था? यही कारण है कि इस जीवन का अंत कर रहा हूँ। मृत्युशैया पर पड़े अपने बयान में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि तुम मेरी पत्नी और राहुल मेरा पुत्र है। उसे पिता का नाम देकर जा रहा हूँ। मकान की रजिस्ट्री भी तुम्हारे नाम से इसी लिफाफे में है। वैसे तो तुमने मेरा विश्वास नहीं किया, पर आशा है इस जीवन का अंत करके मैं तुम्हें विश्वास दिलाने में सफल हो जाऊंगा। मेरे बेटे राहुल को माँ बाप दोनों का प्यार देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अलविदा वेणु। एक अभागा। पत्र वंदना के हाथ से छूट पड़ा। वो अपनी नादानी पर फफक फफक कर रो पड़ी। अपनी फूलों सी महकती जिंदगी, जिसमें बहार आने ही वाली थी, उसने अपने ही हाथों से उसमें आग लगा दी थी। गुस्से तथा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कितना घातक हो सकता है, उसका नतीजा उसके सामने था।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।